ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। हिमाली तथा पहाड़ी जिलों में फागुन 21 को ही चुनाव करना संभव है, प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का कथन। दैलेख के भैरवी गांव पालिका एक जलजले में 80 अरब 70 करोड़ घन मीटर गैस भंडार होने की चाइना जियोलॉजिकल सर्वे कंपनी द्वारा पुष्टि। सुअर और बंगूर में अफ्रीकन स्वाइन फीवर का खतरा होने के कारण उच्च सतर्कता बरतने की कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्रालय ने की अपील। और सन 2024 के जेनजी विद्रोह से शेख हसीना की सरकार अपदस्त होने के बाद बांग्लादेश में पहली बार संसदीय चुनाव हुआ संपन्न। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कहा है कि हिमालयी तथा पहाड़ी जिलों में फागुन 21 को ही चुनाव करना संभव है। हिमालयी जिलों में चुनाव की तैयारी, सुरक्षा व्यवस्था और भौगोलिक चुनौतियों का स्थलीय निरीक्षण करने के क्रम में आज सोलुखुम्बू और भोजपुर पहुंची प्रधानमंत्री कार्की ने बताया कि इन जिलों में निर्धारित तिथि पर ही चुनाव संपन्न करना संभव है। प्रधानमंत्री कार्की ने कहा कि किसी भी बहाने से चुनाव टालने की स्थिति नहीं है और देश को अस्थिरता के चक्र से मुक्त करने के लिए फागुन 21 का चुनाव ही एकमात्र विकल्प है। उन्होंने आम मतदाताओं, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से आग्रह किया कि वे निडर रहें, क्योंकि चुनाव भयमुक्त, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और धांधली रहित ढंग से संपन्न होगा। सरकार का पूरा ध्यान सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव कराने पर केंद्रित है। यह बताते हुए उन्होंने संबंधित सभी निकायों को अपना संपूर्ण ध्यान चुनाव पर केंद्रित करने का निर्देश दिया। जिला सुरक्षा समिति के साथ ब्रीफिंग के दौरान प्रधानमंत्री कार्की ने निर्देश दिया कि ऐसा वातावरण बनाया जाए जिसमें मतदाता बिना किसी डर, दबाव या प्रभाव मतदान कर सके। उन्होंने हिमालयी क्षेत्र के दुर्गम मतदान केंद्रों में सुरक्षा से कोई समझौता न करने और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने का निर्देश भी दिया। प्रधानमंत्री कार्की ने आज ही कोसी प्रदेश के चुनाव से संबंधित अधिकारियों और सुरक्षा प्रमुखों से भी चुनावी तैयारी और सुरक्षा स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने सुनसरी के इटहरी में समग्र कोसी प्रदेश की स्थिति की समीक्षा की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री कार्की ने चुनावी तैयारियां की सराहना करते हुए आगे भी सभी निकायों के बीच समन्वय के साथ आगे बढ़ने और चुस्त दुरुस्त प्रबंधन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि यदि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से चुनावी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करे तो ऐसे तत्वों को तुरंत हतोत्साहित किया जाना चाहिए। निर्वाचन आयोग ने आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के लिए नागरिक शिक्षा प्रवर्धन के लिए विभिन्न स्रोत सामग्री तैयार किया है। लोकतंत्र, निर्वाचन समावेशिता और निर्वाचन, मतदाता नामावली और मतदान लगायत विषयों को समेटकर स्रोत सामग्री तैयार किया गया है। इसी तरह मतदान का महत्व, निर्वाचन संबंधी संवैधानिक व्यवस्था, निर्वाचन और राजनीतिक दल लगायत के विषयों को समेटा गया है। आयोग ने निर्वाचन शिक्षा के लिए तैयार किए गए नागरिक शिक्षा प्रवर्धन स्रोत पुस्तिका सभी के पहुंच के लिए अपनी वेबसाइट में रखा है। भारत सरकार ने आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनाव के लिए सहयोग स्वरूप तीसरे चरण में 223 वाहन हस्तांतरित किए हैं। गृह मंत्रालय में आज आयोजित कार्यक्रम में गृह मंत्री ओम प्रकाश अर्याल को नेपाल के लिए भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने ये वाहन सौंपे। इससे पहले भारत ने पहले चरण में 61 और दूसरे चरण में 254 वाहन सहयोग स्वरूप उपलब्ध कराए थे। यह जानकारी गृह मंत्रालय के सहसचिव एवं प्रवक्ता आनंद काफले ने दी। इसी तरह भारत सरकार ने नेपाली सेना के लिए भी अतिरिक्त 50 वाहन उपलब्ध कराए हैं। इन वाहनों को राजदूत श्रीवास्तव ने प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देल को हस्तांतरित किया। ये जानकारी प्रवक्ता काफले ने दी। कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्रालय ने सुअर वंगूर में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के जोखिम को देखते हुए संबंधित किसानों से उच्च सतर्कता बरतने की अपील की है। मंत्रालय ने कहा है कि अभी तक इस रोग के विरुद्ध कोई टीका उपलब्ध नहीं है, इसलिए सुअर वंगूर पालन फार्मों में जैविक सुरक्षा उपाय अपनाने की जरूरत है। यदि अस्वाभाविक रूप से सुअर या बंगूर की मृत्यु हो तो तुरंत संघ प्रदेश या स्थानीय तह पर स्थित पशु सेवा केंद्र या संबंधित निकाय को सूचना देने का आग्रह किया गया है। संक्रमण फैलने से रोकने के लिए किसानों को आवश्यक सावधानी अपनाने संबंधी संदेशमूलक सूचना जारी की गई है। यह जानकारी मंत्रालय के अंतर्गत कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केंद्र के डॉक्टर संजीव पंडित ने दी। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबू, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ने राष्ट्रीय सभा का चालू अधिवेशन कल फागुन 1 गते की रात 12 बजे से प्रभावी होने के साथ समाप्त कर दिया है। राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता रितेश कुमार साक्य द्वारा आज जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि राष्ट्रपति पौडेल ने नेपाल के संविधान के प्रावधानों के अनुसार मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रीय सभा का चालू अधिवेशन समाप्त किया है। स्वदेश में अपराध करके विदेश भागे 10 लोगों को नेपाल पुलिस के अंतर्राष्ट्रीय प्रहरी संगठन के समन्वय से नेपाल वापस लाया गया है। चालू आर्थिक वर्ष में 11 लोगों के विरुद्ध रेड नोटिस और 3 लोगों के विरुद्ध डिफ्यूजन जारी हुआ है, तो वहीं रेड नोटिस जारी हुए 8 और डिफ्यूजन जारी हुए 2 लोगों को इंटरपोल के समन्वय से विभिन्न देशों से गिरफ्तार करके स्वदेश लाया गया है। यह जानकारी नेपाल प्रहरी के प्रवक्ता डीआईजी अभि नारायण काफले ने दी। रक्षा मंत्रालय और उसके अधीनस्थ निकायों में चालू आर्थिक वर्ष के पौष महीने के अंत तक विनियोजित कुल बजट का 45.82% खर्च किया गया है। द्वितीय त्रैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मंत्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समिति की आज हुई बैठक में परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देखी गई समस्याओं और चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। यह जानकारी मंत्रालय के प्रवक्ता मनोज कुमार आचार्य ने दी। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल पीएसबी के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ महेन्द्र विष्ट ने कहा है कि देश में संख्यात्मक रूप से मीडिया की विकास होने के बावजूद गुणवत्ता पूर्णता और आर्थिक स्थिति कमजोर रहने की अवस्था में रासासा जैसी राज्य की समाचार समिति की अपरिहार्यता बनी रहती है। राष्ट्रीय समाचार समिति रासासा के 65वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर आज केंद्रीय कार्यालय भद्रकाली में आयोजित सेवाग्राहियों के साथ संवाद कार्यक्रम में कार्यकारी अध्यक्ष डॉ विष्ट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंच का विस्तार करने का सुझाव दिया। महोतरी के मटिहानी नगरपालिका 4 मझौरा गांव में आज ट्रैक्टर के रोटावेटर की चपेट में आने से 2 बालिकाओं की मौत हो गई है। आज दोपहर रोटावेटर के से कटकर 7 वर्षीय फराना खातून और 8 वर्षीय रफिया खातून की मृत्यु हुई। यह जानकारी जिला पुलिस कार्यालय के डीएसपी शैलेंद्र कुमार भट्ट ने दी। उन्होंने बताया कि खेत जोतने के दौरान दोनों बालिकाएं ट्रैक्टर पर बैठी थी, अचानक वे रोटावेटर के नीचे गिर गई, जिससे गला कटने के कारण घटना स्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। सन 2024 में जेंजी नेतृत्व वाले विद्रोह के बाद शेख हसीना की सरकार अभ्यस्त होने के बाद बांग्लादेश में पहली बार संसदीय चुनाव में मतदान हुआ। वर्षों की राजनीतिक अस्थिरता के बाद हुए इस चुनाव को देश के लोकतंत्र की महत्वपूर्ण परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। आज सुबह देर से शुरू हुए मतदान मध्याह्न तक राजधानी ढाका और अन्य शहरों के केंद्रों में उत्साहजनक भागीदारी के साथ जारी रहे। मतदान गुरुवार भर चलेगा और परिणाम शुक्रवार को सार्वजनिक होने की उम्मीद है। पूर्व प्रधानमंत्री हसीना के देश बाहर जाने और उनकी आवामी लीग पार्टी पर प्रतिबंध लगाने के बाद इस चुनाव में लगभग 12 करोड़ 70 लाख मतदाता मतदान के योग्य थे। हसीना वर्तमान में भारत में निर्वासन में रह रही है। 350 संसदीय संसद में 300 सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे, जबकि 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। सांसद बहुलतावादी आधार पर चुने जाएंगे और संसद का कार्यालय 5 वर्ष का होगा। एक उम्मीदवार के निधन के कारण एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान स्थगित किया गया है। चुनाव आयोग ने यह जानकारी दी। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हिमाली तथा पहाड़ी जिलों में फागुन 21 को ही चुनाव करना संभव है, प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का कथन। दैलेख के भैरवी गांवपालिका एक जलजले में 80 अरब 70 करोड़ घनमीटर गैस भंडार होने की चाइना जियोलॉजिकल सर्वे कंपनी द्वारा पुष्टि। सुअर और बंगूर में अफ्रीकन स्वाइन फीवर का खतरा होने के कारण उच्च सतर्कता बरतने की कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्रालय ने की अपील। और सन 2024 के जेंजी विद्रोह से शेख हसीना की सरकार अपदस्त होने के बाद बांग्लादेश में पहली बार संसदीय चुनाव हुआ संपन्न। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।